रत्ना देवी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थीं, हाथों में पल्लू कसकर लपेटा था और आंखें खिड़की से बाहर की धूप में खोई हुई थीं। अंदर का माहौल सुकून भरा तो था, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी परेशानी साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सुषमा देवी ने अंदर कदम रखा। उन्होंने जैसे ही रत्ना देवी को देखा, उनकी बौहें थोड़ी उठ गईं। अरे रत्ना, क्या बात है? सुषमा ने धीमे स्वर में पूछा, कदम कमरे के अंदर बढ़ाते हुए। रत्ना देवी ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की गहरी चिंता छुपी नहीं। दीदी, पता नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ उलझा हुआ सा है, उन्होंने धीरे धीरे कहा। सुषमा देवी उनके पास बैठ गईं। क्यों, इतनी चिंता किस बात की है? श्यामली के वापस आने की बात है या अक्षरा अब इस घर की बहू नहीं बन पाएगी? उन्होंने हल्का सा मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन उनके शब्दों में भी हल्की चिंता थी। रत्ना देवी ने सिर हिलाया। नहीं, इन दोनों में से कोई भी बात नहीं है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन आजकल हवेली में बहुत कुछ अलग हो रहा है, मुझे सही और गलत कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ उलझा हुआ सा लग रहा है। सुषमा देवी ने उनकी हाथों पर हल्का सा हाथ रखा। देखो रत्ना, जो भी हो रहा है उसे दिल में मत रखो, जो बीत गया उसे भूल जाओ और बाकी चीज़ों पर ध्यान दो। सबसे पहले तो दवाई ले लो, अपनी कोई चिंता मत करो, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरी तो मान जा। रत्ना देवी ने थोड़ी देर उनकी बातों को सुना और फिर धीमे धीमे सिर हिलाया।
ठीक है दीदी, तुम्हारी बात में सच है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हवेली में सब कुछ बदल रहा है, जैसे हम ही इसमें खो गए हैं, सुषमा ने हल्का सा हंसते हुए कहा। रातों की बातें और हवेली की खामोशी, हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन याद रखो, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारे फैसले ही हवेली की दिशा तय करेंगे। रत्ना देवी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और धीमे धीमे दवाई की शीशी उठाई। मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। विश्वनाथ अब भी अपने रास्ते पर है और अक्षरा, उसका चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। सुषमा देवी ने उनकी आंखों में देखकर समझा कि रत्ना देवी की चिंता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी गहरी है। रातों के तूफान से डरने की जरूरत नहीं रत्ना, हवेली का हर कोना सुरक्षित है और विश्वनाथ भी, वो अपने बेटे की तरह सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा है, श्यामली के लिए भी। रत्ना देवी ने हल्का सा मुस्कुराया। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं सब कुछ सही से संभाल नहीं पा रही हूँ। हवेली में हर दिन कुछ नया होता है, कभी खुशी, कभी झगड़ा, कभी चुप्पी, और मैं सब कुछ समझने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुश्किल हो जाता है। सुषमा देवी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। रातों की खामोशी और हवेली की रहस्यमयी बातें तुम्हें परेशान ना करें, याद रखो रत्ना, तुम इस घर की रीढ़ हो, हवेली का हर सदस्य तुम्हारे फैसलों पर भरोसा करता है, और देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। रत्ना देवी ने उनकी बातों को सुना और थोड़ी देर चुप रहीं। कमरे में हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, दीदी तुम्हारी बातों में सच्चाई है, मुझे बस ये डर है कि आने वाला वक्त कैसे होगा, विश्वनाथ का निर्णय, श्यामली की वापसी, अक्षरा की मजबूरी, सब कुछ अचानक इतनी तेजी से बदल रहा है कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। सुषमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो रत्ना, हवेली की हर समस्या का हल तुम्हारे पास है, बस खुद पर भरोसा रखो, और हाँ कभी कभी दूसरों की बातें और अफवाहें भी हिला देती हैं, लेकिन तुम हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर रही हो, ये तुम्हारी ताकत है। रत्ना देवी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे खुद पर और अपने फैसलों पर भरोसा रखना चाहिए। विश्वनाथ भी अब अपने फैसले पर दृढ़ है, उसे सब समझाना पड़ेगा, लेकिन वो अब भी हमारा बेटा है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। सुषमा देवी ने उनकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा। बिल्कुल रत्ना, तुम्हारी जिम्मेदारी और प्यार ही हवेली को सही दिशा देगा, बाकी सब समय के साथ सही हो जाएगा। अब दवाई लो, थोड़ा आराम करो, बाकी सब बातें बाद में। रत्ना देवी ने धीरे धीरे दवाई ली और उसका सेवन किया। कमरे में कुछ देर खामोशी छा गई, दोनों बस एक दूसरे की मौजूदगी में बैठी रहीं। बाहर की धूप अब कमरे में हल्की गर्माहट छोड़ रही थी, लेकिन रत्ना देवी के मन में अभी भी हल्की सी बेचैनी थी। दीदी, कभी कभी ऐसा लगता है कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जिसे मैं अभी नहीं समझ पा रही। दिन रात सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन अंदर से सब कुछ उलझा हुआ है, सुषमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हवेली का नियम है रत्ना, हर जगह रहस्य और बदलाव आते रहते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा अनुभव और समझ ही सब कुछ संभालेगा, तुम हर तूफान से ऊपर उठ सकती हो। रत्ना देवी ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराई। हाँ दीदी, मैं कोशिश करूंगी, अब ये बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही है, तुम्हारे साथ बैठकर लगता है कि सब कुछ संभल जाएगा, तुम्हारा होना मेरे लिए राहत है। सुषमा देवी ने हल्की हंसी के साथ कहा, हमेशा रत्ना, हवेली चाहे जितनी भी मुश्किलें लाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और देखो, हर समस्या का हल होता है, बस धैर्य और समझ चाहिए। धीरे धीरे रत्ना देवी ने अपनी आंखें बंद की। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी सब कुछ संभालने की और अपने डर को कम करने की। दीदी, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम हमेशा मेरी चिंता समझती हो। सुषमा देवी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, रात की खामोशी और हवेली की रहस्यमयी बातें तुम्हें परेशान न करें। तुम मजबूत हो रत्ना, और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी परिस्थिति में कोई भी तूफान आए, हम इसे मिलकर सामना करेंगे। रत्ना देवी ने धीरे धीरे सिर हिलाया, हाँ मैं जानती हूँ, अब मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा और हवेली में जो भी बदल रहा है उसे समझने की कोशिश करूंगी। साथ ही कमरे में हल्की सी धूप उनकी आंखों में पड़ रही थी और रत्ना देवी ने महसूस किया कि इस हवेली में उनका अनुभव, उनकी समझ और उनके फैसले ही सब कुछ संभाल सकते हैं। सुषमा देवी ने धीरे धीरे कमरे से बाहर कदम रखा, ठीक है रत्ना, अब आराम करो, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, तुम बस अपनी ताकत पर भरोसा रखो। रत्ना देवी ने हल्का सा मुस्कान दी और अपने पल्लू को कस लिया। कमरे की खिड़की से बाहर हल्की धूप आ रही थी, हवेली की दीवारें शांत थीं, लेकिन रत्ना देवी जानती थी कि इस शांति के बीच भी हवेली में बहुत कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जिसे अभी सब समझ नहीं पाए थे। लेकिन एक बात तय थी, उनका अनुभव, उनका प्यार और उनकी समझ ही हवेली को संभाल पाएगी।